ओम शांति, गुड इवनिंग टू एवरीवन। और आज के हमारे हिंदी टॉक सीरीज में हम आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है स्विच फ्रॉम फियर टू लव, भय से प्रेम की ओर बढ़े। तो जब कहा जाता है कि प्यार से बढ़कर कोई शक्ति नहीं, लेकिन उस बीच में कहीं ना कहीं एक डर भी छुपा रहता है। और हमने देखा है कई बार हम कोई डिसीजन लेते हैं या किसी से बात करते हैं तो आउट ऑफ फियर करते हैं या आउट ऑफ लव करते हैं, तो दो बातें उसमें आ जाती हैं। तो जहां पर डर है तो नेचुरली हमारे डिसीजंस भी राइट नहीं होंगे या हमारा कम्युनिकेशन भी उतना पावरफुल नहीं होगा या उतना नेचुरल नहीं होगा। तो उस डर को कैसे अपने अंदर से निकालें। और कई बार तो देखा जाता है कि हम भगवान को भी प्यार से ज्यादा डर से याद करते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो वो डर की वजह क्या है और कैसे हम इसमें शिफ्ट, इसको हम स्विच करें, प्यार प्यार में बदल करके हर कार्य को हम सहज बनाएं, तो वो आज हम सुनेंगे हमारे परम आदरणीय आरती दीदी जी से। और मैं अभी उनका परिचय भी देना चाहूंगी। और ये हमारा एक सौभाग्य है कि आज दीदी जी खास हमारे साथ में इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश, भारत में मध्य प्रदेश स्टेट्स में इंदौर सिटी, तो वहां से आप हमारे साथ में जुड़े हैं। तो दीदी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक में। और दीदी का परिचय, दीदी डॉक्टर ब्रह्मा कुमारी आरती दीदी जी, आप जोनल इंचार्ज हैं मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के। तो ब्रह्मा कुमारी के जितने भी सेंटर्स हैं इंदौर सॉरी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, और वहां के आप इंचार्ज हैं, डायरेक्टर हैं। और आपको जो ब्रह्मा कुमारीज का परिचय मिला 1967 में, तो आप सोच सकते हैं मोर देन 5 decades, 58 ईयर्स से आप ब्रह्मा कुमारी से कनेक्टेड हैं। आप राजयोग का अभ्यास करते हैं, कुशल राजयोग शिक्षिका हैं। और आपने 1970 से अपना पूरा जीवन ह्यूमैनिटी की सेवा में, मानवता की सेवा में आपने समर्पित किया। और आज आपके अंडर में, आपके नेतृत्व में 300 से भी अधिक सेवा केंद्र पूरे स्टेट में चल रहे हैं। और आपके साथ में 500 ब्रह्मा कुमारी बहने, 500, इट्स नॉट ए स्मॉल नंबर। मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे सोचकर भी गूज पिंपल्स आ रहा था कि आपके नेतृत्व में कि आप कितने कुशल लीडर हैं, कि 500 से भी अधिक बहने सेवाएं देती हैं, ब्रह्मा कुमारी की विभिन्न एक्टिविटीज में पार्ट प्ले करती हैं। और हाल ही में आपको समाज के विभिन्न क्षेत्रों में 45 ईयर्स तक की गई सेवाओं के फलस्वरूप आपको डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो और वर्तमान में आप शिव शक्ति रिट्रीट सेंटर, जिसका भी निर्माण कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा है मध्य प्रदेश में, तो वो भी जैसे कि हर जगह पर एक रिट्रीट सेंटर्स हैं, जहां पर आकर के बहुत सारे भाई बहने इस ज्ञान का लाभ लेते हैं। तो ऐसा ही एक रिट्रीट सेंटर मध्य प्रदेश में इंदौर में बन रहा है। और दीदी आपको जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तो आपसे बहुत ही जैसे प्रेरणा मिलती है। आप एक हम जैसी बहनों के लिए एक आदर्श हैं। आपका डिसिप्लिन, आपका डेडिकेशन, कैसे आप इतना निरंतर आप सेवाएं करते आ रहे हैं, और कितने ना बहन भाइयों के जीवन को आप आगे बढ़ाने, उनके मार्गदर्शन के लिए अपने मित बने हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अभी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आज के टॉपिक पर, भय से प्रेम की ओर बढ़े, तो उस पर आप प्रकाश डालेंगे। थैंक यू दीदी।
ओम शांति। सभी भाई बहन जो जहां से सुन रहे हैं उन सब को गुड मॉर्निंग, ओम शांति। आप सब भाई बहनों को हम आज बताने वाले हैं कि कैसे हम भय को समाप्त कर और भगवान से शक्ति लेकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। भय किस बात से होता है? नेगेटिव थॉट्स के द्वारा भय होता है और पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा हमारा प्रेम उमड़ता है मनुष्य आत्माओं के लिए, भगवान के लिए एवं जो भी हमारे संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं, उन सब को हम प्रेम से अपने नजदीक, भगवान के नजदीक खींच लेते हैं। सोचिए भय उत्पन्न क्यों हुआ? भय छोटी छोटी बातों में उत्पन्न होता है और भय मन से उत्पन्न होता है। वैसे भय नहीं लगेगा, लेकिन जब नेगेटिव थॉट लगने लगती हैं, सोच चलता है तो भय उत्पन्न हो जाता है। और नेगेटिव थॉट किस बेस पर चलती है? जैसे कुछ बातें मैं आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले हमें थॉट आता है अपनी बीमारियों के कारण। जब हम बीमार होते हैं और इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कैसी बीमारी बताएगा, क्या बताएगा? अभी तक डॉक्टर ने तो कुछ बताया नहीं, लेकिन हमें पहले से ही विचार चलने लगा, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं मुझे फ्लू तो नहीं हो गया, कहीं मुझे टीबी तो नहीं हो गई। थोड़ा सा कफ आने लगा, थोड़े से हम बीमार हुए, बुखार उतर नहीं रहा है, तो तुरंत हमको ये स्मृतियां आने लगती हैं। और ये स्मृति इतनी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वर्तमान समय में नेगेटिव थॉट्स हम सबका बहुत पीछा करती हैं। और जब ऐसी थॉट चलती है तो तुरंत क्या होता है कि दुखी हो जाते हैं और दुखी होकर फिर सोचने लगते हैं, तनाव उत्पन्न हो जाता है। और तनाव उत्पन्न होगा तो सोचिए बीमारी जो है वो बढ़ जाएगी और घर कर लेगी। लेकिन अगर हमें पॉजिटिव थॉट चलता है तो खुशी होती है और पॉजिटिव थॉट्स के कारण ही हम कहीं ना कहीं से शक्तियां लेकर अपने अंदर अपनी बीमारी को समाप्त कर सकते हैं। तो बीमारी भी जब आई तब थॉट चले। ऐसे ही व्यक्ति गरीबी के कारण भी नेगेटिव सोचने लगता है कि कितनी गरीबी छाई हुई है, कितना दुख छाया हुआ है, आज हमारे पास पैसे नहीं, आज हम मकान नहीं खरीद सकते, कार नहीं खरीद सकते और साथ साथ हम खाना पीना अच्छे से नहीं खा सकते। तो ऐसी गरीबी में हमारी स्थिति क्या हो गई? और इस गरीबी के कारण आप सबने सुदामा का मिसाल सुना होगा कि सुदामा इतना गरीब हो गया था कि वो अन्न का दाना भी मुंह में नहीं डाल सकता था और वो मुट्ठी भर चावल भगवान के पास ले जाने के लिए सोचता जरूर था, लेकिन उसके कदम भगवान की तरफ बढ़ नहीं सकते थे। हिम्मत करके एक दफे वो एक मुट्ठी चावल लेकर भगवान के पास गए, परमात्मा के पास गए और जाकर उन्होंने वो चावल दिया। भगवान ने उसे अपना मित्र माना था और मित्र मानने के कारण जब मुट्ठी चावल उससे लेकर खा लिया तो उसको उसके बदले में सोने के महल मिल गए, अर्थात उसका घर गोल्डन पैलेस बन गया और वो अन्न की शुद्धि के साथ साथ एक अन्न मुट्ठी भर दान देने से उसे इतनी प्राप्ति हो गई। तो ऐसे ही हमको भी अन्न का दान जरूर करते रहना चाहिए। अन्न के दान से हमारा घर भरपूर रहता है और पॉजिटिव थॉट्स जब चलाते हैं हम, चलाना भी हमें पड़ती है क्योंकि हम उस परम पिता परमात्मा की संतान है। वो परमात्मा हम आत्माओं की रखवाली करने वाला है। वो परमात्मा हमें हर चीज से भरपूर करने वाला है और वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखकर परमात्मा को हम बच्चों ने पुकारा है, गॉड को पुकारा है, तो वो हमारी आवाज सुनकर इस सृष्टि पर आया और आकर के हम आत्माओं को सब चीज सहज करके दे रहा, परिवर्तन कर रहा, विश्व का परिवर्तन, आत्माओं का परिवर्तन, प्रकृति का परिवर्तन, हर चीज का परिवर्तन पॉजिटिव थॉट्स भर के वो कर रहा है। तो इसीलिए हमें ऐसे परमात्मा की स्मृति में हर समय रहना चाहिए। नेगेटिव की जगह हम पॉजिटिव थॉट्स चलाते रहें तो उससे हमें प्राप्ति भी सहज हो जाएगी और इसके साथ साथ हमें अपमान का भय होता है। अपमान का भय कैसे होता है? देह अभिमान के कारण, बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण। जब हमें बॉडी कॉन्शियसनेस होता है, देह का अहंकार होता है, तो उस अहंकार से हम चूर हो जाते हैं। अहंकार के नशे में हम इतना डूब जाते हैं कि हम अपने को बहुत एकदम पावरफुल व्यक्ति समझने लगते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस दुनिया को चलाने वाला वो स्वयं भगवान है, जो चलाता है, जो पावर भरता है। अगर हम उसके सामने अहंकार दिखाएंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी? आप सब भाई बहनों ने श्री कृष्ण के बारे में तो सुना होगा कि श्री कृष्ण जब कंस के सामने आते थे तो उसके हाथ पैर ढीले हो जाते थे, और कैसे दे अभिमान में आकर उसने उनसे बदला लेने का सोचा। ऐसे ही हम आत्माएं जब सुनते हैं कि कोई हमारा अपमान कर रहा है तो हम भी उसको चार शब्द बोलते, अपमान को सहन नहीं कर पाते, जबकि परमात्मा ने हम आत्माओं को कहा है मान अपमान स्तुति निंदा जय पराजय सब में समा, किसी भी बात में कम नहीं होना, बराबर होना। हम हमेशा परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिसमें हमेशा परमात्मा के यही डायरेक्शन आते हैं कि कोई कितना भी गाली दे लेकिन आप उसको फील नहीं करना, आप उसको अपमानित होकर नहीं सुनना, बल्कि खुशी से लेना कि ओहो मेरा हिसाब किताब इस आत्मा के साथ चुप्त हो रहा है। अगर ये मुझे गाली देती है तो मैंने भी इसको कोई ना कोई कष्ट पूर्व जन्म में दिया होगा, इसीलिए मैं इस आत्मा को शांति की दान दूं, सुख का दान दूं और पॉजिटिव बातें सुनाऊं, जिसे कहते हैं सकाश देना, मैं इसे सकाश दूं, तो अपने आप ही इसका बोलना समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हमें हमेशा उपकार की भावना रखनी चाहिए। कभी भी हम किसी से अपकार की स्थिति पैदा न करें। कोई कितना भी करे लेकिन हमें नहीं करना। आप सब भाई बहन आज यहाँ भय से निवारण सुनने के लिए बैठे हैं, तो मैं समझती हूँ कि आप सब उस परमात्मा से, खुदा से, भगवान से जुड़े हुए हैं और किसी न किसी रूप में आप उसको याद जरूर करते होंगे, तो आप उनसे शक्ति लेकर अपने अंदर इतनी पावर भरिए कि आप अपमान को सहन कर सके, क्योंकि सहन करने की शक्ति हमारे अंदर बहुत होनी चाहिए। सहन शक्ति से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, सहन शक्ति से ही हम व्यर्थ चिंतन को समाप्त कर सकते हैं, सहन शक्ति से ही हम व्यर्थ बोल भी बंद कर सकते हैं, क्योंकि व्यर्थ को सोचना, व्यर्थ को बोलना, व्यर्थ को देखना, इन सब बातों से हमको न्यारा और प्यारा रहना चाहिए। और इसके साथ साथ अभी देखिए समय ऐसा चल रहा है, तो जब हमें बुढ़ापा आता है, भय तो हमको बचपन में भी होता है, छोटेपन में बच्चा होता है तो उसे भय लगता है, पर माता पिता के संरक्षण में रहने के कारण वो अपने को बहुत बहादुर समझता है। ऐसे ही जब यंग होता है व्यक्ति, युवा होता है, तो उस समय भी उसको भय लगता है, और फिर युवा के बाद जब बुढ़ापे में आता है वो अपनी थर्ड स्टेज पर आता है तो उस समय भी उसको भय लगता है। वो सोचता है कि मेरी पालना कौन करेगा, बूढ़ा हो गया हूं, बच्चे मुझे रखेंगे कि नहीं रखेंगे। इसीलिए आजकल बूढ़ा घर खोल दिया, कि सब जो है उसमें भर्ती हो और घर में बच्चों को कुछ वो नहीं उठाना पड़े, टेका नहीं देना पड़े किसी भी बूढ़े व्यक्ति का। लेकिन ये गलत है, हमारी सोच गलत है। जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी बहुत सी बातें हमारे लिए उपयोगी होती हैं। और बूढ़ा घर में अगर है, अपने दादा दादी घर में है, नाना नानी घर में है, तो वो बच्चों को भी संस्कार अच्छे दे सकते हैं। इसीलिए भारतवर्ष में जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जहां पर 50 की फैमिली भी इकट्ठी रहती है और साथ साथ सभी एक दो की मदद करते हैं, एक दो से मिलते हैं, एक दो से लेन देन करते हैं। क्योंकि आज जब हमको नेगेटिव सोच चलता है तो उस नेगेटिव सोच को हम किसी न किसी से राय सलाह करना पसंद करते हैं, सोचते हैं कि हम कुछ कहें, हम कुछ सुने और उसके कारण हमें कोई न कोई दोस्त या कोई न कोई पार्टनर जरूर चाहिए। तो परिवार में अगर बहुत सारे लोग हैं तो उनमें से किसी एक को हम पार्टनर बनाकर उसके साथ लेन देन कर सकते हैं। और जब लेन देन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या होता है, हमारा मन हल्का हो जाता है, कोई ना कोई राय हमको अच्छी मिल जाती है, जिसके कारण हम उस राय के अनुसार चलते हैं तो हमें प्राप्ति भी होती है और रास्ता भी सुगम हो जाता है। तो इसीलिए हमें बुढ़ापे का भी ध्यान रखना है और बुढ़ापे में भी जो भय होता है वो हमको निकाल देना है कि नहीं, आप बुजुर्ग हैं, आप घर के मेंबर हैं और आपको घर में ही रहना है और घर में रहकर हम सबको सही डायरेक्शन देकर चलाना है। इसीलिए इसका भी भय हमको निकालना है। अगर आप भय को अंदर रखेंगे तो वो नुकसान पैदा करेगा। इसलिए हमें परमात्मा ने ये कहा है कि किसी भी स्थिति में रहो लेकिन उस निराकार परमात्मा को याद करते रहो। और इसके साथ साथ मौत का डर भी रहता है लोगों को। मौत का डर कैसे, आज फ्लाइट में हम बैठेंगे तो सोचेंगे कहीं फ्लाइट चलते चलते रुक नहीं जावे, हम कहीं पीछे ना रह जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, माने कितने थॉट्स हमको समय चल जाते हैं। लेकिन हमें भय नहीं रखना चाहिए, मरना तो एक दिन है, जब मरना है तो मरने से डरना क्या, डरने की कोई बात नहीं। और जब जिसका समय आया होगा उस समय वो मरेगा, कोई ऐसा नहीं है कि वो पहले से ही शरीर छोड़ दे। लेकिन इसमें हमें डर नहीं होना चाहिए। मौत का सामना करने वाले मौत से परे हो जाते हैं। मरने वाले जब परमात्मा की याद में रहते हैं, उसकी स्मृति में रहते हैं, तो उन्हें मरने से डर नहीं लगता। इसीलिए हम आत्माओं को ऐसा अभ्यास करना है कि हम कभी मरे नहीं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमारी मातेश्वरी बहुत ही शक्तिशाली थी, जगदम्बा सरस्वती जिसका नाम है, शारदा जिसका नाम है, अन्नपूर्णा जिसका नाम है, वो सर्वश्रेष्ठ मम्मा इस यज्ञ को संपूर्ण रूप से चलाने वाली थी। बाबा का राइट हैंड और बाबा को हर बात में हेल्प करती थी, बाबा की हर बात को मानती थी और तुरंत उसको कार्य में लाती थी। तो इसीलिए एक दफ़ा मम्मा बीमार हुई, बॉम्बे में आई तो डॉक्टर्स ने चेकअप किया तो मम्मा को कैंसर था, थर्ड स्टेज में। रमेश भाई के घर पर मम्मा को रखा था बॉम्बे में, और फिर रमेश भाई ने बाबा को कहा कि मम्मा कैंसर से पीड़ित है तो मम्मा को ये बात बताई जाए। और इसके बाद बाबा ने हाँ कहा। फिर उन्होंने अव्यक्त बाप दादा को, माने ट्रांस में जो बहने जाती हैं, वो भगवान से मिलकर और वहां से संदेश लेकर आती हैं। तो उस समय बॉम्बे में दीदी की बहन अपनी शीलिंद्रा दादी थी, उन्होंने बाबा को संदेश दिया, रमेश भाई ने खास भेजा और बाबा को बुलाया और बुला करके कहा कि मम्मा को ये बीमारी है। तो बीमारी का बताया तो बाबा ने कहा मुस्कुराते हुए, मम्मा को बता दो। तो वो थोड़ा अंदर ही अंदर उनको संकल्प चल रहे थे कि मैं कैसे मम्मा को बताऊं। तो बाबा ने कहा एक चिट्ठी लिखकर मम्मा के तकिए के नीचे रख दो। तो मम्मा ने उस समय वो चिट्ठी खोली, और चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था कि आपको कैंसर है। तो जब कैंसर का पता चला तो मम्मा मुस्कुराती रही, कुछ नहीं बोली। और फिर मम्मा को आबू ले गए। आबू में भी बहुत हालत धीरे धीरे, क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि थर्ड स्टेज है, इस थर्ड स्टेज में मम्मा बचेंगी नहीं, इनको शांति से जहां भी रहना चाहती हैं वहां ले जाओ। तो इसीलिए आबू में लेकर गए और वहां मम्मा के कमरे में मम्मा लेती रहती थी, और तो भी लेते लेते भी बच्चों की सेवा करती थी, मिलती थी सबसे, टोली देती थी। और एक दफे बाबा ने उनके सामने ही अंगूर की बेल लगाई थी बगीचे में, और अंगूर की बेल में अंगूर आ गए थे। तो बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा अंगूर आ गए हैं और आपको सब बच्चों को अंगूर खिलाना है। तो भी मम्मा ने देखे इतनी बीमारी होते हुए भी, आज सोचो कि किसी को अगर कैंसर की बीमारी होगी तो उसकी स्थिति क्या होगी। व्यक्ति ज्यादा दिन तक उस स्थिति से जूझ नहीं सकता है, इतनी तकलीफ होती है, इतना दर्द होता है कि उसको सहन करना मुश्किल हो जाता है, और लोग इतना सहन नहीं कर सकते, पर मम्मा ने उसको सहन किया। तकलीफ बहुत थी तो भी बाबा ने मम्मा को हॉल में लिटाया और वहां पर वो अंगूर सब बच्चों को दिलाए मम्मा के सामने, और फिर उसके बाद मम्मा ने शरीर छोड़ा। तो कहने का मतलब क्या है कि बीमारी से जूझने की शक्ति भी हमको तब आती है जब हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते, भगवान के प्रति हमारी आस्था पक्की हो जाती है, निश्चय पक्का हो जाता है और उस निश्चय के आधार पर हम परमात्मा की स्मृति में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। तो मम्मा के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला। आज हमारे इस संस्था की सबसे पहली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मातेश्वरी जगदम्बा थी। जगदम्बा इसलिए कहते हैं कि वो जगत के पालनहार है, जगत का उद्धार करने वाली है, जगत को वो परिवर्तन करने वाली है और उन्होंने परिवर्तन जगत को किया है। हम सब आत्माओं में खुशबू भरकर बहुत ही सौम्य जीवन, साधारण जीवन। वैसे देखा जाए तो जब मम्मा लौकिक परिवार में रहती थी तो बहुत फैशनेबल थी, सब चीज पहनने का शौक, इंग्लिश स्कूल में पढ़ती थी और कैसे डांस और गाना सब चीज उनकी हॉबी थी। बाबा ने उनको गाना गाने के लिए अपने पास बुलाया था और गाना सुना बाबा ने, कौन सा उस समय एक गीत बहुत प्रचलित हुआ था, तो उस गीत को बाबा ने मम्मा से सुना। जब मम्मा से सुना तो मम्मा ने गीत गाया, बहुत अच्छा गाती थी, सितार बजाती थी, बहुत अच्छी वीणा बजाती थी, तो हर चीज में निपुण थी और अपना प्रभाव हम वत्सों के ऊपर उसी अनुसार छोड़ा। तपस्या करना भी सिखाई, गलतियों को भी इशारे से ध्यान पर दिलाया। छोटी मोटी गलतियां तो संगठन में होती ही हैं, जहां बहुत सारी बहनें रहेंगी, भाई बहन रहेंगे, वहां कुछ न कुछ तो बात होगी ही, तो गलतियों को भी हल्के से इशारा देती थी, जो किसी को फील ना हो, जो किसी को न लगे कि इन्होंने हमारे बारे में क्या सोचा। तो ऐसी मातेश्वरी जगदम्बा जो हम आत्माओं को इतना ऊंचा उठाने वाली, यही नहीं ब्रह्मा बाबा जिसको हम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, उनकी तो बहुत ही कमाल थी। कैसी कमाल कि एक सेकंड में परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, उस साक्षात्कार के आधार पर उन्होंने अपना बिजनेस वाइंड अप कर दिया। हीरे ज्वारात का धंधा था, बहुत जोरदार बिजनेस चलता था, लेकिन उस बिजनेस को बाबा ने समाप्त कर और जो भी पैसा उनको मिला वो ईश्वरीय यज्ञ के अंदर लगाया, ईश्वर अर्थ दान दिया। ईश्वर अर्थ दान देने से, मैंने पहले भी आपको सुनाया सुदामा का मिसाल, तो धन का दान करने से धन की प्राप्ति होती है। आज दुनिया में लोग बाग कोई धर्मशाला बनवाता है तो धर्मशाला बनाने वाले को बड़ा मकान मिलता है, कोई यूनिवर्सिटी बनवाता है तो यूनिवर्सिटी बनाने वाले को कॉलेज बड़ा मिलता है, वो उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा ऊंची होती है। और इसके साथ साथ धर्मशाला बनवाने वाले को साथ साथ अपने धन का दान करने वाले को धन की प्राप्ति होती है। तो हमें परमात्मा के प्रति अपना तन मन धन तीनों ही समर्पित करना चाहिए। अगर हमें मौत का भय है, अभी आप हालत देख रहे हैं विश्व की कि क्या हो रहा है, कितने बड़े बड़े देश एक दूसरे से बदला लेने को तैयार हैं, और कभी भी थोड़ा भी अहंकार आया और सोचा कि ये मुझे कम समझते हैं, वहीं पर बटन पर हाथ जाएगा और उस समय चारों तरफ पटाखे जैसे बमों की धूम मचेगी। तब भयभीत नहीं होना है हमको, तब हमको अभय बनना है। कितने भी पटाखे बजें, कितने भी विघ्न आए, कितने भी बम फटें, लेकिन हम उन सब से निर्भय होकर उस स्थिति का सामना करें। इसीलिए हमारा प्यार परमात्मा की तरफ अगर होगा, भगवान जिसे हम गॉड फादर कहते हैं, एक ओंकार कहते हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं, वो परमात्मा अगर हम उससे प्यार रखेंगे, उससे मोहब्बत रखेंगे, उसके लव में लीन हो जाएंगे, परमात्मा के साथ हमारा प्यार कैसा, अजापा जाप जैसा, अर्थात निरंतर हम परमात्मा की याद में रहने का अभ्यास करें, श्वासों श्वास उसकी याद रहे, उसकी स्मृति रहे, तो हम जितना उसको प्यार करेंगे उतना वो भी हमको प्यार करेगा। और बहुत सी कहानियां भगवान के साथ बताई जाती हैं। मीरा का प्यार जब कृष्ण से था, और कृष्ण ने मीरा को साक्षात्कार कराया, तो उसने अपने परिवार, अपने राज्य को छोड़ दिया, वो दीवानी हो गई। और वो गीत एक ही गाती थी, प्रेम दीवानी, तुम्हारे प्रेम में मैं दीवानी हो गई। इसीलिए पर इसको सब लोग गलत मानते हैं, वो सोचते हैं कि प्रेम में भगवान के दीवाने हो गए ये, इनके ऊपर कुछ जादू हो गया है और ये जादू इनको जरूर कहीं ना कहीं दूसरे स्थान पर ले जाएगा। सन्यासी बन गए हैं, सन्यास कर लिया है, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी कन्याएं भगवान के पति अपने को अर्पित कहती हैं। उस समय दादियां भी बहुत छोटी एज में बाबा के पास आ गई थी, तो लोग पिकेटिंग करते थे, लोग आकर के उनको बोलते थे, तो वो कभी भी हिली नहीं। इतना पक्का दृढ़ निश्चय था, आज उसी निश्चय के आधार पर ये संस्था खड़ी है, क्योंकि वो लोग नींव थे और नींव ने आकर के पूरी संस्था, पूरा भवन अपने ऊपर उठाया हुआ है। वर्तमान में दादियां तो नहीं, परंतु अब दीदियां हैं। आ हमारी जयंती बहन जी, जो आपके सारे कारोबार को देखती हैं, वो उन्हीं में से एक हैं। आपको बहुत ही फायदा है कि इतनी बड़ी अथॉरिटी को आपने अपने पास रखा हुआ है। उनका सम्मान करना, उनका मान करना, ये आपको बहुत जरूरी है। और जितना आप उनसे राय लेकर कार्य करेंगे, उतनी आपको कार्य में सफलता मिलती जाएगी। तो हमें प्रभु से प्रेम करना, तेरे प्यार में बाबा हम खो गए। आज आपके सामने वहां सेंटर की बहनें होंगी, वो कितना प्यार से, कितना खुशी से आपकी सेवा करती हैं, आपको ज्ञान सुनाती हैं, अपने आप का ध्यान नहीं देती, तो उनका ध्यान देने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप भाई बहन जितना बहनों का रखवाली करेंगे उतना वो आपकी सेवा अच्छी तरह से कर सकेंगी, इसीलिए आप इस बात पर ध्यान दें कि हम प्रभु के प्रेम में लीन हो जाएं, प्रभु की याद निरंतर बनी रहे। हम भी बाबा ब्रह्मा से मिले हैं, ब्रह्मा बाबा ने उस समय इतना प्यार दिया। मुझे याद है कि हम पहली दफे जब बाबा से मिले थे, जनवरी मास था और वहां पार्टी बहुत ज्यादा नहीं थी पांडव भवन में, क्योंकि उस समय तो केवल पांडव भवन ही था, हिस्ट्री हॉल में क्लास चलता था। बाबा हमेशा वहां आकर क्लास कराते थे, अमृत वेले का योग भी चलता था। 3:30 बजे बाबा आकर के कहां पर खड़े होते थे, आप सबने पांडव भवन देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो भी जरूर माउंट आबू जाएं। एक दफे तो अपने लाइफ टाइम में अगर आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल अनुभव होगा कि हम स्वर्ग में आ गए। आप ऐसा नहीं सोचना कि हम कोई आपको लॉलीपॉप दे रहे, ये लॉलीपॉप नहीं है, परंतु एक्चुअल पोजीशन है। आप जाके देखिए तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, तनाव से मुक्त हो जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, बस आपको ये लगेगा कि हमें बहुत बड़ी प्राप्ति हो गई है। तो इसीलिए बाबा ने वहां पर आकर योग कराया 3:30 बजे। वहां निर्वैर भाई जी का ऑफिस है, उस ऑफिस के बाहर थल्ला बना हुआ है, उस थल्ले पर बाबा खड़े होते थे और हम सब भाई बहन नीचे खड़े होते थे और बाबा की तरफ एक टक दृष्टि लेते थे। ऐसे लगता था जैसे गोप गोपियां कृष्ण से शक्ति ले रही। बाबा का योग इतना पावरफुल था कि जब बाबा दृष्टि देते थे तो 1000 वोल्ट का करंट बॉडी से निकल जाए, ऐसी महसूसता होती थी, अशरीरीपन की स्थिति का अनुभव होता था। ये व्यक्ति भूल जाता था कि मैं किस दुनिया में हूँ। वहां रहने के बाद तो आपको न्यूज भी सुनने की प्रैक्टिस नहीं होगी, अखबार भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं लगेगी, आपको याद ही नहीं रहेगा कि मुझे पेपर पढ़ना, डेट भी याद नहीं रहेगी। मैंने बाबा के पास जाने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं और वहां पर सिर्फ याद रहता है भगवान के साथ हमारा प्यार, जो हमारा प्यार हमें हमारी नैया को पार लगा सकता है। ऐसे प्यार, ऐसी मोहब्बत अगर हमें भगवान के साथ हो जाए तो बहुत खुशी रहेगी, अंदर ही अंदर हम उछलते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। आपने ऐसे बहुत से योगी देखे होंगे जिनके मन में सिवाय परमात्मा के और कोई दूसरी बात नहीं रहती। तो आप सब भाई बहनों से मेरा यही निवेदन है कि आप सब उस परम पिता परमात्मा को जो जानते हैं वो तो बहुत अच्छा है, और जो नहीं जानते हैं वो भी इस बात को जाने और जानने के बाद उस भगवान से अपना संबंध जोड़ेंगे तो हमें शांति, सुख, आनंद, प्रेम की प्राप्ति बहुत सहज हो जाएगी और हमारा जीवन पवित्रमय हो जाएगा। इसीलिए मैं आप सब भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरी बातें इतना शांति से सुनी, और आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है इस गुलदस्ते के द्वारा। मैं आप सबको लिए तो गुलदस्ता नहीं दे पाई, लेकिन एक एक फूल जो सब बैठे हुए हैं उन सब को मैं देती हूँ, और हमारी जयंती दीदी को भी ये गुलदस्ता जरूर देना
जी,
आपको भी दे रही।
थैंक यू दीदी, थैंक यू जी, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच दीदी। आपने तो जैसे हमें जो हमारे संस्था के फाउंडर ब्रह्मा बाबा और हमारी संस्था की फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मम्मा मातेश्वरी जगदम्बा, उनकी बातें सुनाकर कितना दिल को खुश कर दिया। और मैं शुरू में बताना भूल गई कि हमारे दीदी का सौभाग्य है कि वो हमारे संस्था के फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से 1967 में मिले हैं। तो ऐसी महान हस्ती आज हमारे साथ में है, तो हमारा कितना बड़ा भाग्य है। और कितनी सारी बातें दीदी ने आज हमें जो करंट में आज हम देखते हैं, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया फ्लाइट का कि हमने अभी देखा कि भारत में जो एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ, तो कैसे अभी उसके बाद हम कईयों से बातें करते हैं तो कहते हैं कि अभी तो हमें फ्लाइट में बैठने में डर लगता है कि हम ट्रैवल करें या नहीं करें। लेकिन ये आत्मा की बात है कि आत्मा जब हम अपने को समझ लेते, स्वीकार कर लेते, तो सब भय निकल जाता और अभय बन जाते। और फिर परमात्मा से हम अगर प्यार की डोर बांध ले तो जैसे कि हर बात सहज हो जाती। तो मुझे बहुत सारी बातें मैंने अपने लिए नोट भी की, आपने बहुत अच्छा सुनाया दीदी। अपमान कब है, ये सबसे बड़ी बात होती है, और उससे हम कैसे मुक्त बने। और भी कितने प्रकार के भय आपने सुनाए, मौत का डर, बुढ़ापे का डर। तो ये सारी बातें जो दीदी से हमने आज सीखा उसको हम जरूर, आपने कितनी सुदामा की बात, कृष्ण की बातें, और जो खास जो ब्रह्मा बाबा जब दृष्टि योग कराते तो कैसे वो गोप गोपियों के समान हम जैसे उनके साथ में परमात्म प्यार का अनुभव करते। सो थैंक यू सो मच दीदी, दिल से बहुत बहुत थैंक्स कि आपने अपना समय आज हमारे लिए निकाला। और अभी हम चाहेंगे दीदी कि आप 5 मिनट हमें अच्छी तरह जो आपने अभी योग का अनुभव सुनाया प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साथ, तो हम सभी भाई बहनों को भी शॉर्ट में उसका अनुभव कराएं। थैंक यू।
ओम शांति। अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। और सोचिए हम पांडव भवन में खड़े हैं। ब्रह्मा बाबा हमारे सामने हैं, बाबा ने हमको पहला सबक दिया, आत्मा को प्रैक्टिस कराई, आत्मा थी आत्मिक स्थिति में स्थित हुई, अभ्यास करा, मैं आत्मा हूँ, जो भी होती मन बुद्धि संस्कारों सहित मां स्वरूप पवित्रता स्वरूप अपने सामने शिव बाबा और ब्रह्म बाबा दोनों को देख रही शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मित्रों से सर्च लाइट दे रहे थे,
research slide से इस शरीर मात्र पांचों विकार निकलते जा रहे हैं
थैंक यू दीदी, आपने हम सभी को पांडव भवन की यात्रा कराई। जो भाई बहने नहीं भी गए हैं, जैसे दीदी ने कहा कि आपका अपना घर परमात्मा का घर, एक बार जरूर आप उसका भी अनुभव करने माउंट आबू राजस्थान में जरूर आइए, आपको निमंत्रण है। और दीदी ने हम सभी का को फ्लावर्स भी दिया, तो आई होप कि सभी को फ्लावर्स भी मिला, दीदी का प्यार मिला। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। और यस, जरूर हम सभी आपकी बताए हुए बातों को ध्यान रखेंगे। तो थैंक यू, ओम शांति।
वेलकम।